शिवी को उसके घर छोड़कर आर्य वहां से जा चुका था। उसके हाथ में ज्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर भी शिवी को दर्द हो रहा था। ऊपर जाते हुए वो आर्य के बारे में ही सोच रही थी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जरूर किसी बेवकूफ़ ने ही इस बात को कहा होगा। पहली बार जब उसे इंडियाना में देखा था तब वो एक घमंडी अमीर लड़का लगा था, और अब इतनी प्यार और केयर देखकर तो कोई भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। शिवी लिफ्ट की तरफ जा रही थी तभी उसे जिया की याद आई। उसने अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा, हे भगवान, जिया के बारे में तो मैं भूल ही गई। वो बिचारी मेरे लिए परेशान हो रही होगी, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। शिवी ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला तो उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। हाँ, अब यही होना बाकी रह गया था। शिवी ने उसे ऑन किया, फ़ोन टूटने के बावजूद भी काम कर रहा था। उसने जिया को कॉल किया। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारी शॉपिंग करने में इतनी हेल्प की और तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई। दिस इज़ नॉट फेयर। रेस्टोरेंट उसका है तो तू क्या उसके बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती? ऐसे तो तू उसके ऑफिस में भी काम करती है, ऐसा करना, कल से ऑफिस भी मत जाना। जिया शिवी से काफ़ी गुस्सा थी और ये उसके बातों से साफ नज़र आ रहा था। अरे बस करो, पूरी बात जाने बिना ही गुस्से में उबल रही हो। अच्छा बताओ तुम कहाँ हो? शिवी ने उसे शांत करते हुए कहा। मैंने कितने प्यार से हम दोनों के लिए वहाँ से खाना लिया था। बाहर आई तो तुम वहाँ से जा चुकी थी। मैं टैक्सी में हूँ और घर आ रही हूँ। और हाँ, तेरा सामान और खाना अभी तक मेरे पास है। तुझे अपना सामान चाहिए तो मेरे घर आ जाना, जिया ने बताया। चलो अच्छा है, अब उस टैक्सी वाले को बोलो कि वो टैक्सी मेरे अपार्टमेंट लेकर आए, मुझे तुमसे इम्पॉर्टेंट बात करनी है। और हाँ, गलती से भी खाने को छूना मत, तू मेरे बिना अकेले इतना अच्छा खाना नहीं खा सकती है। अब जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। शिवी ने उसके जवाब का इंतज़ार किए बिना ही कॉल कट कर दिया। जिया अब अपने घर आने के बजाय शिवी के घर आ रही थी। वहीं शिवी ऊपर पहुँची तो घर पर नील के अलावा कोई नहीं था। शिवी के हाथ पर चोट देखकर नील घबरा गया। वो जल्दी से उसके पास आकर बोला, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, शिवी ने काफ़ी लापरवाही से जवाब दिया और काउच पर जाकर बैठ गई। क्या एक्सीडेंट? और तुम इतना नॉर्मली बात कर रही हो, कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। नील को इस तरह उसकी केयर करता देख शिवी ने हैरानी से कहा, तुम और मेरे लिए परेशान हो रहे हो? लगता है मेरी लाइफ के सभी अजीब लोगों ने मुझे शौक देने का सोच रखा है। पहले मुझे परेशान करते हैं और बाद में मेरी परवाह। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं हॉस्पिटल से ही आ रही हूं और मुझे सच में ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैं एक्सीडेंटली किसी गाड़ी से टकरा गई थी और वो ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसने मुझे घर तक भी छोड़ा। शिवी ने बातों बातों में उसे सब बता दिया। शिवी को ठीक देखकर नील ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने चेहरे के भाव को सामान्य करके बोला, हाँ हाँ ठीक है, रोड पर देखकर चला करो। वैसे तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है बिग ब्रदर? शिवी ने तिरछी मुस्कुराहट दी। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही, पता है ना, डैड ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। तुम्हें कुछ हो गया तो वो फिर से मुझे डांटेंगे या कोई और नई पनिशमेंट दे देंगे। नील ने बड़ी चालाकी से बात को टाल दिया। पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर मेरी केयर करता है तो बताने में दिक्कत क्या है? रूट बनकर रहने में क्या ज़्यादा मज़ा आता है? शिवी ने पड़बड़ाकर कहा। नील अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद जिया वहां पहुंची। उसने शिवी के हाथ पर चोट देखी तो वो भी घबरा गई। ये सब कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिया ने परेशान स्वर में पूछा। यही वजह थी कि मुझे वहां से जाना पड़ा। लगता है मेरी जिंदगी में रोज उस आर्या सिंह ओब्रॉय से टकराना लिखा है, कभी ऑफिस में तो कभी कहीं और। पापा के बारे में सोचते हुए मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी और ना जाने कब गार्डन से रोड पर आ गई। वो भी काफी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और उसने मुझे टक्कर मार दी। ये तो उसने सही टाइम पर ब्रेक लगा दिया, वरना मैं इस दुनिया से जा चुकी होती। शिवी के मुंह से मरने की बात सुनकर जिया ने उसकी तरफ घूर कर देखा। दुनिया से जाए तेरे दुश्मन, सोच ले फिर तेरे उस आर्या सिंह ओब्रॉय को मरना पड़ेगा, शिवी ने हंसकर कहा। ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें मजाक करना होता है, बोलते हुए जिया ने लापरवाही से शिवी के हाथ पर मारा। वो भूल गई थी उसके शिवी के जिस हाथ पर मारा था उसकी चोट लगी थी। शिवी दर्द से चिल्लाई, एम सू सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो अब साथ में खाना खाते हैं। शिवी उसे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर लेकर गई। दोनों बातें करते हुए खाना खा रही थी। बातों ही बातों में जिया ने कहा, अच्छा शिवी, तो उसके सामने छुपने का ड्रामा कर रही है? बाकी सब चीज़ों से भले ही वो तुझे पहचान ना पाए, लेकिन इस चोट को कैसे छुपाएगी? हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वैसे ज़्यादा नहीं लगी तो हो सकता है ये चोट दो दिन में ठीक हो जाए, शिवी ने जवाब दिया। मेरे पास एक आइडिया है, जिया बोली। तुम अपने हाथों को पूरी तरह कवर करके रख सकती हो, लॉन्ग स्लीव्स का इनर पहन लेना, फिर तुम्हारी चोट छुप जाएगी। हाँ, यही बाकी रह गया। खुद को थोड़ा चबी दिखाने के चक्कर में ऐसे ही मैं ज्यादा कपड़े पहनती हूँ। पता है ऑफिस काफी गर्म है और इतने कपड़ों में वहाँ मुझे सब बेवकूफ समझते हैं। वैसे आज उससे मिलकर लगा कि वो मुझसे इतना गुस्सा नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो क्या मैं उसे सब सच बता दूँ? आर्या का बर्ताव देखकर शिवि अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन वो अभी भी असमंजस में थी। तुम चाहो तो बता सकती हो, पर फिर वो यही कहेगा पहले छुपाने की क्या जरूरत थी। जब तक पॉसिबल है उसे कुछ मत बताओ, जिया ने अपनी राय रखी। शिवि ने भी उसकी बात को मानना सही समझा। नील नितारा से मिलने के लिए बाहर गया था, इसलिए शिवि ने जिया को रात के लिए अपने पास ही रोक लिया। शिवि को उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करने के बाद आर्या घर आ चुका था। आज जो भी हुआ वो सब बातें उसके जहन में अभी तक ताज़ा थीं। अच्छा हुआ उसे ज्यादा नहीं लगी। मैं इतनी लापरवाही से गाड़ी कैसे ड्राइव कर सकता हूँ? ये सब मिस्टर शुक्ला के कॉल के बाद ही हुआ था। आर्या लिविंग रूम में था, उसके सामने टीवी स्क्रीन पर फुटबॉल मैच चल रहा था, पर उसका ध्यान अपने ही ख्यालों में था। मिस्टर शुक्ला ने बताया कि वो लोग उस आदमी को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। कई बार लोग पैसों के चक्कर में इंसानियत भूल जाते हैं। क्या उस आदमी की बेटी इतनी पावरफुल है कि पैसे के दम पर किसी को भी खरीद सकती है? आर्या अपनी उधेड़बुन में खोया था। उसके घर की डोरबेल बजी तो उसका ध्यान टूटा। सामने पीटर अंकल थे जो उसके लिए खाना लेकर आए थे। आर्या का चेहरा देखकर वो समझ गए कि वो परेशान है। तुम परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? उन्होंने पूछा। नहीं, सब ठीक है, आप खाना रख दीजिए, मुझे भूख होगी तब मैं खा लूंगा। आर्या ने उन्हें कुछ बताना सही नहीं समझा। भूख नहीं है इसका मतलब जरूर कुछ हुआ होगा, तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं, पीटर बोलते हुए वहीं आर्या के पास सोफे पर बैठ गया। आर्या ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मेरी परेशानी की वजह एली से जुड़ी हुई है। अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, उस हादसे को 2.5 साल बीत चुके हैं। किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। किस्मत में तुम्हारा और एली का साथ नहीं लिखा था।
मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है अंकिल, लेकिन आप ही बताइए, जिसने हम दोनों को अलग किया, मैं उस इंसान को कैसे माफ कर सकता हूँ? जिस इंसान ने उस हाथ बेरहमी से उसका कत्ल किया, मैं कैसे उसे खुली हवा में सांस लेते हुए देख सकता हूँ? पीटर अंकल के सामने आर्या का दर्द छलक पड़ा। तुमने बताया था उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल किया है, क्या उसे अभी तक सजा नहीं हुई? पीटर ने हैरानी से पूछा। अब तक उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, उसका केस भी सरकारी वकील देख रहे थे। ना जाने अचानक कहाँ से उसकी बेटी आ गई और उस आदमी का केस एक अच्छे लॉयर के पास चला गया। मैंने इस केस का काम वहाँ के सबसे अच्छे और ईमानदार लॉयर को सौंपा था, ये उसी का बेटा है। कल उस आदमी को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन अब वो लोग कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। मुझे डर है कि अगर वो बेगुनाह प्रूफ हो गया तो। आर्या बोलते बोलते रुक गया। तुम बेवजह घबरा रहे हो, तुम्हें अपने इसी डर पर काबू पाना होगा। यही मैं सोच रहा हूँ, मैं आज किसी से मिला और उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। मुझे अपने डर पर काबू पाकर इंडिया जाना होगा। मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए वो आदमी कैसे बाहर निकल पाता है। आर्या का दर्द अब उसका गुस्सा बनकर बाहर आ रहा था। तुम्हें अपने इसी गुस्से की ज़रूरत है, ना कि इमोशंस की। शायद अली के कातिल को सजा होने के बाद तुम आगे बढ़ पाओ, पीटर अंकल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा और वहां से जाने लगे। उन्हें जाते देख आर्या ने पीछे से कहा, क्या आगे बढ़ना ज़रूरी है पीटर अंकल? हाँ, क्योंकि एक जगह रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर तुम्हारी जगह अली होती तो मैं उसे भी यही सलाह देता और उसकी मदद भी करता। अगर मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बताना, मुझे खुशी होगी। पीटर एली का चाचा था, जो उसका एकमात्र रिश्तेदार इस दुनिया में बचा था। जब वो इस दुनिया में थी तब आर्या ने उनकी बहुत हेल्प की थी, इसी वजह से वो उसकी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा उसके लिए हाजिर रहता था। आर्या ने उनकी बात पर हामी भरी। पीटर वहाँ से जा चुका था। पीटर अंकल की बातों और शिवि ने आर्या को आज काफ़ी प्रभावित किया और वो सच में चीज़ों से निपट कर आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगा। क्या आगे बढ़ना इतना ज़रूरी है? तभी मॉम के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी की। हमेशा से मैं उन्हें गलत समझते आया हूँ, या यूं कहूँ कि उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। कितनी उलझन है मेरे दिमाग में, काश कोई ऐसा होता जो मेरी हर उलझन को सुलझा पाता, मेरे दिमाग में चल रहे हर सवाल का जवाब दे पाता। सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए आर्या कुछ ही देर में नींद के आगोश में था। उसने कभी किसी से बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं की और यही वजह थी कि बचपन से उसके मन में कई सवाल हैं जिनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था।